ओम शांति। हम राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुषमा बेन जी का स्वागत करते हैं। आप सभी को क्या लगता है, आप कितने लकी हो? पद्मा पदम भाग्यशाली है ना, कि बाबा के नूरे रत्नों का आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। सुषमा बेन जी भी वो रत्न है जो बचपन से ही बाबा ने जिनको चुन लिया है। साकार बाबा मम्मा के भी बहुत अच्छे अनुभव है। स्वयं जयपुर के अंदर बाबा का बहुत बड़ा केंद्र संभाल रहे हैं, आसपास के विस्तार के सभी सेवा केंद्रों को संभाल रहे हैं, और बाबा के एक बहुत अच्छी फैकल्टी के रूप में भी समय प्रति समय जब भी बुलावा होता है तो सुषमा बेन पहुंच ही जाते हैं। बच्ची होती है या कॉन्फ्रेंस होती है, बिजनेस विंग में आपका बहुत बड़ा योगदान है। खुद चिंतनशील है, बहुत अच्छा मंथन करते हैं और ज्ञान को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज हमें इनका भी लाभ मिला है। तो सुषमा बेन जी, हम सभी को विशेष बाप समान बेफिक्र बादशाह स्थिति कैसे बनाए, है ना? सब कुछ होते हुए बेफिक्र कैसे रहना, वो युक्ति हमें बताएंगे। और बहन बिंदु बहन तिलक देकर के सुषमा बहन का स्वागत कर रही है। ओम शांति। एक बार फिर से सुषमा बहन का स्वागत है। ओम शांति।
ओम शांति। संगम युग की अनमोल घड़ियों में हम बाबा के बच्चे अपने हर श्वास को, हर सेकंड को सफल करें, यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम वो आत्माएं हैं जिनको बाबा ने वरदान दिया हुआ है, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब सफलता हमारी है तो चिंता किस बात की है? आप सबको चिंता है? हैं? जिनको चिंता है वो हाथ उठाओ। जिनको चिंता है उठाओ उठाओ, चिंता वाले भी हाथ उठाओ तो सही। माताओं को तो रहती ही है, हा? भाइयों को नहीं है, माताओं को है। क्यों भाई, क्या चिंता है माताओं को? है माताएं जिन्होंने हाथ उठाया, आपको क्या चिंता है? बच्चों की चिंता है। परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते, ये चिंता है? क्या चिंता है बताओ जी, क्या कह रहे हैं? ये चिंता है। और आपको क्या चिंता है बहन? बंधन है? हैं? थोड़ा सा बंधन है इसलिए चिंता है। अच्छा, और भाइयों को? किसी को नहीं है, भाई सब विजयी हैं, पांडव। अरे पंजाब वालों को क्या चिंता है, शेरे पंजाब हो आप सब तो, हैं? पंजाब वालों को चिंता है क्या? पंजाब वालों को कोई चिंता नहीं है। तो हम बाबा के बच्चे हैं, हमें ज्ञान मिल गया, अब क्या चिंता है बताओ? सोचो थोड़ा, हमें क्या चिंता है? क्योंकि हमें ज्ञान देने वाले ने केवल ज्ञान नहीं दिया है, और क्या कहा है उसने? और क्या कहा है? वो कहता है अपने सारे बोझे मुझे दे दो, आपको जो भी चिंता है। हो सकता है कईयों ने संकोचवश हाथ ना भी उठाया हो कि बहन जी क्या कहेंगी, कि अच्छा हमें चिंता है। कोई ना कोई सूक्ष्म में थोड़ी बहुत चिंता हर एक को है। वास्तव में हम बाबा के बच्चों को बिल्कुल निश्चिंत होना चाहिए। वैसे भी तो कहते हैं ना, चिंता ताकि कीजिए, फिर हम किस चीज की चिंता कर रहे हैं, हम किस बात की चिंता कर रहे हैं। हाँ, चिंतन जरूर करें, क्या चिंतन करें कि हमें भगवान ने जो कुछ दिया है इसका हम बढ़िया से बढ़िया सदुपयोग क्या करें। कोई कहेंगे हमें तो ज्ञान भी बहन जी इतना समझ नहीं आता। अच्छा, कोई बात नहीं, ज्ञान समझ नहीं आता ना। कोई कोई माताएं कहेंगी हमें ज्ञान की इतनी गहराई नहीं है, हम ज्ञान का मनन चिंतन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना तो हम सब महसूस करते हैं कि भगवान ने हमें ये शरीर ये जीवन दिया है जिसमें कोई कमी नहीं है। है कोई कमी? आप एक छोटा सा मकान बनाते हैं दो चार कमरों का, उसमें भी बहुत सी गलतियां छोड़ देते हैं, होगा ना कईयों को अनुभव। कहेंगे हमने मकान बनाया था, हमें अनुभव नहीं था इसलिए हमारे मकान में ये कमी रह गई। लेकिन भगवान ने हम सबको ये जो मकान दिया हुआ है इसमें कौन सी कमी है भाई, बताओ। और इस मकान में सब कुछ ऑटोमेटिक है, जब देखना है तो अपने आप आंख देख भी लेती है। आप बातें करते जा रहे हैं, सामने से गाय आई तो भीड़ तो नहीं जाते हैं ना। बातें करने में कितने भी मस्त हो, गाय आ रही है एक साइड पे हो जाएंगे। आंख ने काम किया ना, आंख ने सूचना दी ब्रेन को, ब्रेन ने फट से उसका एक्शन ले लिया। कितनी ऑटोमेटिक मशीनरी है। प्यास लगी है, कितने भी बिजी होंगे कहेंगे अरे प्यास लगी है जरा दो घुट पानी पी लें। अब हम बाबा के बन गए हैं, बाबा का बनने के बाद हमारा ये ब्राह्मण जीवन नेचुरल ब्राह्मण जीवन हो जाए तो कोई चिंता नहीं है। नेचुरल ब्राह्मण जीवन क्या है? ऐसा नहीं हम सवेरे क्लास में आए तो उस समय तो हम अपने आप को हर प्रकार से तैयार करते हैं। सेंटर पे जाना है तो सफेद कपड़े भी पहन लेते हैं। सेंटर पर समय से आए, फिर चले गए, फिर दुनियादारी में गए तो बस उनकी तरह हो जाते हैं। कि हमारा नेचुरल ब्राह्मण जीवन हो जाए, केवल बाहरी रूप से नहीं, क्लास में आना है, सफेद कपड़ा पहनना है, केवल इतना नहीं, लेकिन हमारा जो अंदर का मानसिक और बौद्धिक स्तर है इसका संपूर्ण परिवर्तन चाहिए। हमारी मानसिकता कौन सी है? जैसी बातें दुनिया वाले करते हैं अगर हम भी वही करते हैं तो हमारे में और उनमें क्या अंतर है? हमें बाबा ने तिलक दिया है, बच्चे तुम कौन हो? चैतन्य मस्तक मणि हो, सबको मिला हुआ है ना। बाबा तो हमें इतनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, हम अपने आप को किस दृष्टि से देखते हैं? जरा सी बात हो जाती है तो कहते हैं हाय मेरी किस्मत ही ऐसी, ऐसे ही हाथ मारते रहेंगे माथे पर। बाबा हमें इतनी ऊंची दृष्टि से देखते, ये मेरी मस्तक मणियां है। तो हमने अपना तिलक परमानेंट लगाया है। हम कहते तो हैं हम निश्चय बुद्धि हैं, निश्चय बुद्धि निश्चिंत, तो निश्चय बुद्धि माना जो बाबा ने कहा वैसा मैं बनी। बाबा ने कहा बच्चे तुम मस्तक मणि हो, और मैं क्या कहती रहती हूं सारा दिन, आगे हे राम हे भगवान कहते थे, अब फिर हे बाबा हाय बाबा कहते रहते हैं, अंतर क्या हुआ? शब्दों का ही अंतर है। हाय बाबा क्या करें, चारों तरफ जब चक्कर लगा लेते हैं कहीं फंस जाते हैं, बाबा अब तो तू ही है, तू ही मेरी रक्षा करना। और बाबा ने पहले से ही कहा बच्चे मैं तुम्हारा रक्षक हूं। बच्चे दिल से कहें एक बार बाबा, बाबा हाजिर हो जाता है, फिर हम क्यों बुला रहे हैं उसको। तो अगर हम बेफिक्र रहना चाहते हैं तो हमें अपना जो कंबाइंड स्वरूप है, जो आज भी बाबा का वरदान था, कंबाइंड स्वरूप को हमेशा इमर्ज रखना है। ब्रह्मा बाबा ने भी यही किया। अभी तो हमारे पास ज्ञान की स्पष्टता है, साकार और अव्यक्त मुरलियां हैं, लेकिन जब बाबा स्वयं साकार में थे ज्ञान की इतनी स्पष्टता नहीं थी। लेकिन हमारे यज्ञ में दो चीजों की पावर कहें बल कहें था, एक तो योग बल था, दूसरा पवित्रता का बल था। इस यज्ञ की स्थापना पवित्रता हमारी फाउंडेशन है, और हमें पुरानी दादियां सुनाया करती थी, रात को भी उठ उठ करके बाबा को याद करते थे। अभी रात को तो छोड़ो, हम दिन में भी याद में बैठते हैं तो यूं यूं होते रहते हैं, क्योंकि अंदर से हम हल्के नहीं हैं। अंदर से हल्कापन तब आएगा जब एक बार सब कुछ आप बाबा को सचमुच सुनाओ। अभी भट्टी में भी आए हैं ना, अभी आज से मानस बना लो। मुझे सारा जहां से भी याद है शुरू से अंत तक जो है बाबा को एक बार सुनाओ, बाबा के कमरे में बैठकर, चाहे लिख के दो चाहे सुनाओ, और अपना मन अंदर से हल्का करो। ऐसे नहीं क्या करें, ना तो हम कह सकते हैं ना तो हम पूछ सकते हैं। संगम पर हमें इस दुविधा की अवस्था में नहीं रहना है, क्योंकि सर्वशक्तिवान शिव बाबा स्वयं हमारा माता पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है, वो प्रैक्टिकल में हम अनुभव करें। मम्मा बाबा के अनुभव तो आपने बहुत से सुने हैं, आपको बहुत सुनाएंगे। बाबा की जीवन कहानी पढ़ लो, बाबा कैसा निश्चिंत रहा। लेकिन सूक्ष्म पुरुषार्थ मम्मा बाबा का क्या था? सूक्ष्म पुरुषार्थ था हर घड़ी अशरीरीपन की स्थिति में रहना। इसलिए बहुत से भाई बहन आपको सुनाएंगे कि हम बाबा के आगे आए, बाबा ने दृष्टि दी, हम तो अपने मन में बहुत सी बातें लाए थे, बाबा ने जैसे ही दृष्टि दी हम भूल गए। क्या इतना मुझे साइलेंस में जाने का, अशरीरी होने का अभ्यास है? जब फुर्सत मिले मैं परम धाम में पहुंच जाऊं, जब फुर्सत मिले मैं डीप साइलेंस में चली जाऊं, क्या मुझे ये अभ्यास है? हम तो करते क्या, जब फुर्सत मिलती है तो क्या करते हैं, हैं? जी फुर्सत मिलेगी कहेंगे अच्छा चलो अभी क्या करें, कोई काम तो है नहीं, चलो फलाने को फोन कर लेते हैं। आजकल तो ये मोबाइल की ऐसी, मोबाइल ने सबका मन बुद्धि मोबाइल कर दिया, बस स्थिरता बिल्कुल खत्म हो गई है। मुझे लगाना है तो बस एक ही नंबर लगाना है, बाबा का नंबर, जीरो, मैं भी जीरो बाबा भी जीरो। हो सकता है ऐसा, बेफिक्र बादशाह रहना चाहते हैं तो यही करना पड़ेगा। विचार कीजिए, हम यहां से गेट से बाहर निकलते हैं, निकलते ही सामने से जीप आ रही है, कार आ रही है, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, साइड में हो जाएंगे, सो इजी। टक्कर तो नहीं मारेंगे ना, चाहे वो रॉन्ग साइड हो तो भी टक्कर मारेंगे क्या? हाँ ये कहेंगे, अरे आज रश बहुत है, अरे भाई संभल के जाना, दो चार गाड़ियां आ रही हैं। लेकिन जो हमारे जीवन की बातें हैं उनको हम क्या सोच लेते हैं, ये तो भाई बहुत बड़ी समस्या है, बच्चा मेरी नहीं मानता है, पति मेरी नहीं मानता है, माँ बाप मेरी बात नहीं सुनते हैं, भाई बहन मेरे साथ मिलकर नहीं चलते हैं, ये तो समस्या है, ये समस्या नहीं है। बच्चा मेरी नहीं मानता है, उसका पार्ट ही ऐसा है तो क्या करेंगे। बच्चा नहीं मानता है और हम क्या करते हैं, उसको दो चार चमाट भी लगाते हैं, डांट भी लगाते हैं, तू नालायक है, तू ऐसा है। अब बीज कौन सा बो दिया हमने, बीज कौन सा बोया, कौन सा बोया, नालायक है, वो क्या बनेगा? हम कैसे हैं, खुद को देखें। और बाबा हमें क्या कहता है, मुरली शुरू होती है मीठे बच्चे और खत्म होती है मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे, वंडरफुल बात है। हम कैसे हैं, हम अपने को देखें ना, हम मीठे हैं, हैं? हम भी तो कड़वे कसैले तीखे पता नहीं कैसे कैसे चटपटे। और बाबा हमें क्या कहता है, विचार करो। तो हम जब बाबा के सामने बैठते हैं तो हमारा जो कड़वापन है कसैलापन है वो सारा दब जाता है, बाबा क्योंकि कह रहा है मीठे बच्चे। अगर हम भी सबसे पहले अपनी ये जो वाणी है इस वाणी का तप करें, वाणी का तप है, क्या तप है, मौन में नहीं रहना। आप कहेंगे बहन जी मौन में तो हम कैसे रहेंगे, काम धंधा नहीं करेंगे क्या, घर गृहस्थी में नहीं रहेंगे क्या? चलो यहां तो एक दिन मौन में रह जाएंगे, घर गृहस्थी में तो नहीं रह सकते, लेकिन वाणी का तप कर सकते हैं। और वाणी का तप ये है, कैसी भी स्थिति हो क्या भी हो, लेकिन मुझे मीठा बोलना है, ये हो सकता है, ये भी बड़ा मुश्किल है। जब तक आप यहां बैठे हैं मुरली सुन रहे हैं तो आप यूं यूं कर भी रहे हो, अब यहां से उठ के जाएंगे ना बाहर, और मान लो पता नहीं आपकी भट्टी कब तक है, अगर कल जाना हो तो आप अरे कल जाना है ना, उसको बोल दिया नहीं बोला, बहन जी ऐसे नहीं ऐसे, वो फलाने की टिकट, एकदम हमारा रूप रंग बदल जाएगा। मुझे बहुत 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 मीठा बनना है, माना साइलेंस में रहना है, साइलेंस माना आज भी बाबा ने कहा ना उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, कोई कुछ कहे तो भी ऐसे नहीं शांत रहो और माताएं अंदर ही अंदर रोती रहे, तब तो आपका मूड ऑफ हो गया, आपको फिक्र हो जाएगा। मैं बेफिकर बादशाह हूं क्यों, मैं बच्चा किसका हूं, उस सच्चे बादशाह का बच्चा हूं ना, शहनशाहों का शहनशाह, बादशाहों का बादशाह, उसका मैं बच्चा हूं, फिर मैं फिक्र किस बात की करूं। अब यहां ज्ञान अप्लाई करें, हर आत्मा का पार्ट अपना है, मुझ आत्मा का पार्ट अपना है, मैं अपने पार्ट को एक्यूरेट प्ले करूं। मेरा पार्ट क्या है? मेरा पार्ट है शांति में रहना है, धैर्यता से रहना है, मीठे बन के रहना है, ये मेरा पार्ट है। निर्णय आपका है, आप सोच लेना भाई रहना है शांति से, रहना है मीठे बन के, ये निर्णय आपका है। अगर मुझे ऐसा रहना है तो क्या भी स्थिति परिस्थिति आए, बाबा स्वयं मेरा साथी है। बाबा आप आओ, लग रहा है सामने वाला गाली दे रहा है, लेकिन बाबा आप आओ। मनोहर दादी सुनाया करती थी ना हम लोगों को कि यज्ञ में जब बेगरी पार्ट था, खाने को नहीं था, मनोहर दादी कहती हम मम्मा बाबा से पूछते थे आपको चिंता नहीं होती है क्या? बाबा कहता था बच्चे मुझे क्यों चिंता है, ये यज्ञ तो उसका है, बच्चे उसके हैं, चिंता उसको है। हमारे तो परिवार फिर भी हद के हैं ना, कि आजकल के जमाने में तो खैर बड़े परिवार है ही नहीं, फिर भी चलो किसी को करके दो चार बच्चे होंगे बस ना। हम चिंता में डूबे रहते, बच्चा इंजीनियर नहीं बना, बच्चा डॉक्टर नहीं बना, बिजनेस नहीं चला, इंडस्ट्री नहीं लगी, फसल ऐसी नहीं हुई, अनेक प्रकार के झंझट हम अपने सिर पे लेके बैठे रहते हैं। पिछले दिनों में हम लोग युगलों की भट्टी में आए हुए थे, रानी बहन ने एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। कहती हम मधुबन में आए हुए थे, चंद्रमणि दादी की बहन थी, उनका नाम था टिक्कन दादी, बेंगलोर में रहते थे। तो एक बार टिक्कन दादी ने सुनाया कि यज्ञ में एक दिन, क्योंकि आगे तो भोजन कैसे खाते थे, ऐसा नहीं था कि जो आया जब आया अपनी थाली ली और खा लिया, नहीं सर, क्योंकि थोड़े से थे ना भाई बहन, बस ऐसे हॉल में बैठ जाते थे, परोसने वाला, हम सब अपनी अपनी थाली लेके परोसने वाले परोस देते थे। तो जो उस दिन जब खाना परोसा गया तो जो खाना बनाने वाली भंडारे वाली बहन थी उसने कहा पहले कि आज सबको जो दाल मिल रही है जितनी मिलेगी इतने से ही रोटी खानी है, दोबारा दाल नहीं मांगनी, माना थी ही नहीं। कहते बाबा ने सुना कि आज मेरे बच्चों को खाना खाने से पहले ये हिदायत दी गई है कि आज इतनी, आप निश्चिंत रहो बहन, पता नहीं कुछ हवा का है असर, ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ ऐसी हिदायत दी गई है कि बच्चों को आज इतनी ही दाल मिलेगी। तो बाबा उठ के अपने कमरे में आ गए और बाबा एकदम योग में बैठ गए और टिक्कन दादी की बाहर पहरे पर ड्यूटी थी। और ये बात है तब की जब ये शुरू शुरू में आए हैं, कोटा हाउस में रहते थे यहां नहीं, और कहा कि थोड़ी देर बाद देखा एक बैलगाड़ी वाला आ रहा है और वो उधर आंगन में घुसा। टिक्कन दादी ने कहा ये आम रास्ता नहीं है, आप गलत आ गए हैं, अब आप अपनी गाड़ी को इधर से घुमा लीजिए। उस बैलगाड़ी वाले ने कहा मैं भी जानता हूं ये रास्ता नहीं है, पर पता नहीं मुझे किसी ने प्रेरणा दी है तुम इस तरफ जाओ। वो कोई ज्ञान में नहीं था, मैं इस तरफ आया हूं। बोलो तो पूछा दादी ने क्या काम है, बोला मुझे जिसने ये कहा है तुम इधर जाओ उसने ये भी कहा है कि तुम्हारी गाड़ी में जो कुछ है वो यहां दे के जाओ। और उसके बैलगाड़ी में क्या था, दो बोरे दाल। सुना का बाबा इतनी जल्दी सुन लेता है, बाबा इतनी जल्दी सुन लेता है। इतना हमारा अंदर में निश्चय हो। क्या सचमुच हमें ये निश्चय है? करण करावन हार शिव बाबा है। किस किस को निश्चय है? करण करावन हार, ज्ञान के आधार से नहीं, ये तो आपने सुना है, सचमुच आपको निश्चय है करण करावन हार शिव बाबा है। नीचे करवा अपने दिल से पूछो, है मुझे निश्चय करण करावनहार। ऐसा था हमारा बाबा। मैं दिन में कितनी बार अशरीरी होने का अभ्यास करती हूं और कितनी बार करण करावनहार बाबा का आवाहन करती हूं। हमारा एक गीत भी बना हुआ है ना, मिला है मुझे करण करावन हार, हमको क्या चिंता, ऐसा एक गाना है, हमको काहे की चिंता, ऐसे करके एक गीत भी बना हुआ है। गा लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन क्या मैंने करण करावन हार को अपने साथ रखा है? वास्तव में हमारे जैसा भाग्यवान इस संसार में कोई है ही नहीं। आपको अगर याद हो तो शायद 15 दिन पहले एक अव्यक्त मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई है ही नहीं, हम तो जरा सा, जैसे घर में भी कहते हैं ना, बच्चे को जरा सी तकलीफ हो, बच्चा जरा सा रोता है, मां भागती है। हमारा बाबा तो उससे भी फास्ट है, जरा सा हम कहते हैं बाबा, बाबा एकदम एहसास कराता है, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं, बच्चे मैं तुम्हारा रक्षक हूं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले खुद ही लगे रहते हैं, हाँ, और जब देखते हैं अब मेरे से तो हो नहीं सकता है, फिर कहते हैं अब बाबा तू ही देख। पहले ही उसको सरेंडर करो ना, तो अपना मन और बुद्धि बाबा को एकदम मुझे सरेंडर करना है, क्योंकि करण करावन हार वो है, मैं तो केवल निमित्त मात्र। अच्छा, आप सबको लगता नहीं कि करण करावन हार बाबा है? बताओ, पूछो अपने आप से। मैं तो कई बार कहती हूं, चलो आप देखिए, आप अपने अपने घरों में रहते हैं, ठीक है, और बहनें सेंटर्स में रहती हैं। जो घरों में रहते हैं उनका कोई ना कोई सोर्स है ना, कमाई का सोर्स, चाहे किसी की एक छोटी सी पान की दुकान ही क्यों ना हो, और उसको मालूम है महीने में मेरी इस दुकान से 5,000 7,000 10,000 कमाई होगी, राइट। और ब्रह्मा कुमारी बहनें अपने सेंटर पर रहती हैं, इनको क्या श्योरिटी है कितनी कमाई होगी, है क्या बिंदु बहन, है क्या श्योरिटी? बस यही श्योरिटी है, बाबा की भंडारी है, जो निकलेगा उससे सेंटर चलेगा, और उसी से सेंटर चलता भी है। और अब देखो जो पुराने पुराने सेंटर है वहां अपने अपने स्थान, आपका सिरसा का भी देखो अपना स्थान बना हुआ है ना, कौन बनाता है, कौन बनाता है, करके कोई भाई बहन बहुत अपना लगाते भी हैं, नो डाउट, लेकिन बनाता कौन है, कितनी बातें होती हैं, बहनों को कौन सा ज्ञान है। प्रत्यक्ष प्रमाण है करण करावन हार बाबा है। मैंने क्या दिल से इसको स्वीकार किया है? आज की ऐसी गंदी दुनिया, भ्रष्टाचारी दुनिया में हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें सेंटर्स चलाती हैं, इनका जीवन देखो, ये किसकी कमाल है, किसकी कमाल है? अपने घर में तो एक बेटी होती है तो सिर के बाल उड़ जाते हैं भाई, जब तक इसकी शादी ना हो जाए। और बाबा की बेटियां दुनिया के सामने है, मंच पर है। कौन कर रहा है? और ये सच्ची बात है, हम चाहें तो अपना एक ये हाथ है ना, इसको यूं भी नहीं उठा सकते। उठा सकते हैं? बात करते करते उठने लगे, अरे उठा ही नहीं गया, क्या हुआ? पैरालिसिस हो गया। ये शरीर तो कहीं भी धोखा दे देता है। बैठे बैठे अरे बात कर रहे थे, हिचकी आई और वो चला गया। हमारे अंदर इतना इस देह का अभिमान है, देह का इतना लगाव है, हमें खुद को कुछ पता ही नहीं पड़ता है। और बेफिक्र रहने के लिए हर घड़ी अशरीरी रहने का अभ्यास चाहिए। अभ्यास नहीं बल्कि अशरीरी बनके हम स्वरूप बन जाएं, हमें भी कोई देखे कहे हाँ ये तो किसी और ही मस्ती में है। हम अपने आत्मिक स्वरूप में हर घड़ी रहे। शुरू शुरू में जो ज्ञान में आए, चाहे हम लोग ज्ञान में आए चाहे हमने दादियों को देखा, संबंध तो थे लेकिन संबंध की भासना नहीं थी। जो शुरू शुरू में आए उन्होंने देखा, मम्मा को देखा, मम्मा की लौकिक मां को देखा। हमारी दादियां भी, गुलजार दादी की लौकिक मां, ऑलराउंडर दादी अब नहीं है, पहले दिल्ली में रहते थे, पर ये सब लोग इकट्ठे रहते हुए जैसे एकदम न्यारे थे। और जो शुरू शुरू में ज्ञान में आए उन्होंने भी ये अभ्यास, तभी तो लोग कहते थे शुरू में ब्रह्मा कुमारियां तो घर बार छुड़ा देती हैं। और वो जो भाषा होती थी पति पत्नी की, बच्चों की, वो भाषा ही नहीं रही। इतना अभ्यास करते थे, आत्मा है आत्मा, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा। और दादियां पूछा करती थी आप अपने घर में कैसे रहते हैं, आजकल तो नहीं पूछते, आगे पूछते थे आप अपने घर में कैसे रहते हैं? आत्मिक स्वरूप से रहते हैं या देह के रूप से रहते हैं? आजकल तो पूछ भी नहीं सकते, पूछेंगे तो फिर दूसरे दिन आधी क्लास भी नहीं रहेगी, बहन जी कहेगी हमारी तो क्लास ही छट गई। लेकिन इसलिए जो पुराने आए ना वो मजबूत, उनकी फाउंडेशन पक्की हो गई। सुनते थे, दादियों ने मौन रखा, घर गृहस्थी में रहने वाले भी मौन रखते थे। तो अगर हम बेफिक्र बादशाह रहना चाहते हैं तो पहली बात, कम से कम दिन में 5 बार 5-5 मिनट अशरीरी बनने का अभ्यास करें। अशरीरी क्या है? मैं केवल आत्मा हूं, बस यहां बैठी हुई एक आत्मा। या जो बाबा कहता है तुम तो मस्तक मणि हो, चमकती हुई मस्तक मणि। और 5 ही बार ये भी अभ्यास करें, करण करावन हार शिव बाबा है। अभी अपना कॉपी पेन छोड़ दो, क्योंकि कॉपी तो खोलोगे तब पढ़ोगे तब याद आएगा, इसका मतलब तब तक तो हम भूले ही रहेंगे, ऐसा ना? हम बहाने तो तैयार करने में फटाफट तैयार रहते हैं। अभी हमको इतना अपने अंदर गहराई से ये प्रिंट कर लेना है कि कॉपी खोलें न खोलें, अपनी सुविधा अनुसार आप कोई भी 5 बार फिक्स कर लें कि मुझे 3 बार सुबेरे, 3 बार दोपहर को या शाम को ऐसे अभ्यास करना है। थोड़ा सीधा होके बैठो, कॉपी पेन सब दूर कर दो, हमसे कोई टच ना करे, आपस में भी एक दूसरे को टच ना करो, ऐसा बैठो। नेत्र खुले रखना, बंद नहीं करने। और ये अभ्यास करो, अपने आप को ये डायरेक्शन दें, मैं आत्मा मस्तक के बीचों बीच चमकती हुई मस्तक मणि हूं। करण करावन हार शिव बाबा, स्वयं मेरे सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु हैं। मेरे सच्चे साथी हैं। सर्वशक्तिवान करण करावनहार शिव बाबा का प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा करण करावनहार शिव बाबा मुझ आत्मा के रक्षक हैं। इस तरह से दिन में 5 बार हम ये अभ्यास करें। आगे भक्ति में भी गीत गाते थे, एक फिल्मी गाना भी बना हुआ है, चिंता मेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तो बाबा तो हमें शरण नहीं, बाबा कहता है तुम मेरी गोद के बच्चे हो, लेकिन हम इसका लाभ लें, हम लाभ नहीं लेते हैं। हम क्या सोचते हैं, मुरली सुनी, मुरली नोट की, मुरली का पॉइंट रिवाइज किया और उस गठड़ी को लपेट के एक तरफ रख देते हैं। कहते हैं अब तो हम जा रहे हैं जंगे मैदान में, कारोबार करेंगे, बस फिर बाबा तू अपने घर बैठ, मैं अपने घर, हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये गठड़ी बना के अलग ना रखिए। मेरा श्वास, मेरा जीवन, मेरा सर्वस्व बाबा है, पहले बाबा पीछे मैं। कहीं भी जाना है बाबा चलो, शॉपिंग पर भी जाना है ना बाबा चलो शॉपिंग पे, बाबा सब्जी लेने जाना है, बाबा भोजन बनाना है, बाबा दुकान खोलना है, बाबा जॉब पर जाना है, बाबा चलो। तो वो जो हमें यहां हर घड़ी टेंस रहते हैं ना, अभी नौकरी पे भी जाना है, टाइम हो गया, दुकान खोलने का टाइम हो गया, नौकर भी आज नहीं आएगा, ये जो हम करते हैं ना, जो मैंने पहले कहा वाणी का तप, ये सब बातें हमें बोलनी ही नहीं है। जो हमें करना है वो बोलना है। वाणी का तप क्या है, जो करना है वही बोलना है। दुकान समय पर खोलना है, मुझे समय पर जाना है, जरूरी नहीं है हम हर बात का जवाब दें, शांति में रहना भी सीखे। मैं कई बार कहती हूं अपनी बहनों से भी, जरूरी है क्या हर बात का जवाब दें, शांत रहना, सुन लिया अच्छा ठीक है, अब बात ही ऐसी है जिसका कोई जवाब नहीं तो शांत रहो। कभी आप लोगों ने सोचा है कि मनुष्य जब मरता है तो जो लास्ट क्रिया है वो कौन सी होती है, कौन सा संस्कार है, मुख अग्नि संस्कार, मर जाता है तो आग कहां लगाते हैं, यूं तो इतने बड़े शरीर में कहीं भी आग लगाओ क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्या? पांव में लगाओ, सिर में लगाओ, टांग में लगाओ, हाथों में, लेकिन क्या करते हैं? मुख अग्नि, मुंह में लगाते हैं, उसको उसका नाम ही है मुख अग्नि संस्कार। नहीं, आप लोग बोल नहीं रहे, नहीं राइट, ऐसे नहीं है, ऐसे ही है ना? क्योंकि ये मुंह बहुत पाप करता है, ये जीभ जो है ना, या तो बातें करती रहेगी, कोई भी करेगी, तेरी मेरी इसकी उसकी, हम बोलते ही रहेंगे, और या ये जीभ ऐसी चटोरी है खाती रहेगी। आप देखिए, है इसको आराम है कहीं? बोलेंगे वो भी गलत, तेरी मेरी निंदा चुगली, आज बाबा ने कहा निंदा चुगली करते हो तो बाप का नाम खराब करते हो, झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे, हेरा फेरी करेंगे, खाना खाया पेट तो भर गया पर अभी मन नहीं भरा, चलो कुछ और खा लें, कुछ चटपटा खा लें, कुछ मीठा खा लें, कुछ नहीं है तो चलो घर में गुड़ ही पड़ा है गुड़ ही खा लें। पर ये जीभ जो है, आप कभी इसको एक दिन बोलो कि हे जीभ आज तुझे शांति में रहना है, बोलना भी हंस रहे हैं नहीं, आप एक दिन ये रियल प्रयोग करके देखिए कि आज बोलना भी नहीं है, खाना तुझे समय पे मिलेगा, आगे पीछे जो चटर पटर करती है ना वो नहीं मिलेगा, इसको एक दिन कह के देखो, ये आपको नाचना चाह देगी। ये जीभ बहुत लड़ाई भी दूसरे से करवा देगी, और है इतनी होशियार, कहते हैं दूसरे की हड्डियां तुड़वा देती है और खुद चुपचाप बैठ जाती है। जब मैंने कुछ ऐसा कह दिया बुरा लग गया, बस वो तो अब बेचारा दुखी होता रहे और खुद ही अंदर जाके चुपचाप बैठ जाएगी। तो ये जो जीभ का वाणी का तप है ना, हमारी सारी कर्म इंद्रियों में से आप देखो, इस कर्म इंद्री को कीजिए आप शांत। बाबा भी कई बार मुरली में कहते हैं, और आगे हमारे मधुबन में सिस्टम भी ऐसे ही था, जब भोजन लेते भी थे, जब थोड़े भाई बहन बढ़ गए, एक बार थाली में डलवा के आ जाते थे, बस जो डलवा लिया वही खाते थे। बाबा कहता है जो अच्छे अच्छे साधु सन्यासी होते हैं, वो थाली में जो एक बार मिल गया बस वही खाते हैं। आता है ना कई बार मुरली में, और हम तो थाली में भी डाल लेंगे, फिर डोंगा पास भी रखेंगे, फिर जो चीज अच्छी लगेगी वो दो तीन बार और भी लेंगे। कहाँ है संतोष, कहाँ है इसको शांति? तो ये वाणी का तप, जीभा का तप, मैं शुद्ध आत्मा हूं ये तो ठीक है, पर ये शुद्ध आत्मा को जो अशुद्ध बना रही है ना, इसको भी थोड़ा तपाने की जरूरत है। आज मुझे सारा दिन बस वही बोलना है जो करना है, तूने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं कहना। मान लीजिए आज बिजली का बिल भरना था और नहीं भरा गया, तो ये नहीं, आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता है, बिजली का बिल भरना था, अब उसकी पेनल्टी लगेगी, वो तो लगेगी ही, चाहे लड़ो चाहे मूड ऑफ करो जो मर्जी करो। पुनः याद दिलाइए कि भाई आज बिजली का बिल भरना था, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं भरा गया, अब कल भरेंगे। हर कीमत पर मुझे वही बोलना है जो करना है, तो हम सदा निश्चिंत रह सकते हैं। अन्यथा हम ही अनेक प्रकार की चिंताओं का आवाहन करते रहते हैं, उसको आना था वो आया नहीं, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं कोई उठा के ना ले गया हो। अरे एक बहन आई, कहती बहन जी मैं जो हूं अभी अपना ये क्या कराते हैं इंश्योरेंस मेडिक्लेम कराऊंगी। मैंने कहा फिर क्या होगा? कि भाई अगर मुझे कोई, अब मेरी उम्र 50 साल हो गई है, और पता नहीं कितने की स्कीम बता रही थी। अगर अब मुझे कभी कुछ हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ हो जाए, तो मेरा ये 2.5-3 लाख का मेडिक्लेम है और मुझे इंश्योरेंस वाले पैसा देंगे। मैंने तब तो सुन लिया, मैंने कहा ठीक है, आप दुनिया वाले बहुत कुछ करते रहते हैं। लेकिन मैंने उसको देखा, बहन को, जिस दिन से उसने मेडिक्लेम कराया है उसको कोई ना कोई बीमारी आती रहती है। पहले हर्निया हो गया, फिर पाँव में दर्द हो गया, फिर पेट में दर्द हो गया। मैंने कहा भाई क्या बात है, मैंने कहा बहन इससे ज्यादा अच्छा है आप पहले इस स्कीम को करो कैंसल, और जो साल में आप चाहे जो भी उसका भरते हो, चाहे 1,000, 1,500 या 10,000, 15,000, आप सोच लो मुझे 15,000 ग्लोबल हॉस्पिटल में लगाना है तो आपको कष्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि पैसा तो दे देगी इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन वो जो सहन करना पड़ेगा वो देगी इंश्योरेंस कंपनी। अब उसका हर्निया का ऑपरेशन है, वो जो कांट फांट होगी उसका क्या होगा भाई। तो ये देखिए, हम पहले ही नेगेटिविटी को निमंत्रण इनवाइट कर रहे हैं। और साकार में बाबा थे, बाबा से पूछा, बाबा हम इंश्योरेंस कराएं? बाबा ने कहा बाबा के बच्चे इंश्योरेंस नहीं करा सकते। ये ठीक है, तब के और अब के वातावरण में बहुत फर्क है, लेकिन आप सोचिए, अब आपकी मर्जी है, भले मधुबन का डायरेक्शन है, पर आप ये देख लीजिए आप कौन सा बीज बो रहे हैं। अब मैं इसलिए मेडिक्लेम अपना इंश्योरेंस करवा रही हूं कि अब मेरी उम्र 55 साल 60 साल हो गई है, और अगर मेरे को कल को हार्ट अटैक हो जाए तो क्या होगा। वो तो केवल पैसा ही देंगे, मेरी आयु नहीं दे सकते। दे सकते हैं भाई, बता दो अगर दे सकते हैं तो। राइट, आप कह रहे हैं, सोच आपकी अपनी है, मैंने बीज कौन सा बोया, क्यों ना मैं ये शुभ बीज बोलूं कि मैं इतना पैसा ग्लोबल हॉस्पिटल में हर साल दूंगी। आपका पैसा बीमारी में लगना तो जरूर है भाई, कोई बहुत बीमार होता है तो पंडित जी भी क्या कहते हैं, कहते हैं जी ये यज्ञ करवा दीजिए, उसमें जो भी लगेगा 10,000-15,000, कोई ज्योतिषी बता देता है आप ये मंत्र जाप करा दीजिए, 10,000-15,000 का खर्चा है। माना जो आपके ऊपर पैसा लगना है वो आप अब किस रूप से लगा रहे हैं ये आप देख लीजिए। आप संकल्प कर लीजिए मुझे हर साल 10,000 ग्लोबल हॉस्पिटल में लगाना है, तो बीमारी मेरे पास ही ना आए ना। क्या विचार है आप सबका, भाइयों का क्या विचार है? या मैं ये सोचूं कल को मैं, वो जो बीमार होना है वो तो होना ही होना है, उसको तो आप रोक नहीं सकते, और उस समय जो खर्चा होना है, और उसके लिए फिर कंडीशन और है। मैंने उस बहन को कहा अच्छा तुम्हें पता नहीं क्या थायराइड हो गया या क्या हुआ, मैंने कहा अब तुम अपना क्लेम ले लो। कहती नहीं, इसमें कंडीशन ये है कि 24 घंटा जो है उसको हॉस्पिटल में एडमिट जरूर होना है। अब उसने डॉक्टर को यह कहानी बताई, डॉक्टर ने कहा मैं लिख के दे दूंगा। अरे सारा झूठ ही झूठ, हम सच्चे बाप के बच्चे, हम कहां फंस रहे हैं। चूंकि हम भी, बुरा नहीं मानना बहन, आप भी बुरा नहीं मानना, चूंकि हम अपने में योग बल नहीं भरते हैं तो हमें ये सहारे चाहिए। चॉइस हमारी है, योग बल मुझे भरना है और या दुनिया का सहारा भरना है, ये चॉइस आपकी। मेरा सहारा कौन है, मेरा सहारा कौन है। और हमने तो देखा बाबा टच करता है, बीमार होते हैं बाबा टच करता है, बच्ची तुम ये नहीं खाओ ये खाओ, वही चीज खाते हैं ठीक हो जाते हैं। आप लोगों को भी कई ऐसे अनुभव होंगे, होते हैं या नहीं होते हैं? आधी बीमारी तो हमारे खाने के कारण ही है। तो इसलिए जो हमारी भावना होगी वो रंग तो जरूर लाएगी भाई, इच्छा आपकी है। तो करण करावन हार बाबा, अगर मैं आपको कहूं कि रोज आप आधा घंटा ये संकल्प से तपस्या करिए, करण करावन हार शिव बाबा है, उसके साथ ऐड कर लीजिए, बाबा की एक अव्यक्त मुरली में भी है, कालों का काल महाकाल शिव बाबा मेरा रक्षक है, बेशक लिख लीजिए। बाबा ने कहा आपको कोई भी किसी भी प्रकार का झंझट झमेला होगा ही नहीं। अब आधा घंटा की यह तपस्या करना बेटर है या और कष्ट भोगना बेटर है, यह चॉइस हमारी है। करण करावन हार शिव बाबा है, कालों का काल महाकाल शिव बाबा मेरा रक्षक है। करिए रोज आधा घंटा। दुनियावी ज्योतिषी पंडित हमें कह देते हैं ना, ये इतनी माला फेरो आपका काम हो जाएगा, वो हनुमान जी का क्या पाठ करो ये हो जाएगा, लग जाते हैं उसमें भाई बहन, मैंने देखा है। लेकिन बाबा गारंटी की बात बता रहा है, इसको हम सोचते हैं अरे आधा घंटा कोई भी, इसमें ये भी नहीं कि अमृत वेले बैठना है, ये भी हमें छूट है, आप किसी भी समय, लेकिन वो आधा घंटा सब बातों से फ्री, ना मेरा मोबाइल, ना मेरे बाल बच्चे, कोई नहीं, मेरा कमरा बंद, मैं और बाबा पास। चाहे सेंटर पे जाके करो, चाहे घर में करो, चाहे बगीचे में बैठ के करो, बस बाबा मैं आपको देख रही हूँ और बाबा मुझे देख रहा है, कालों का काल महाकाल शिव बाबा के सामने बैठी हूँ, शक्तियां आ रही हैं। तो सदा निश्चिंत रहेंगे। अब आपको मंत्र भी बता दिया, अब और बताइए। अभी संडे की जो मुरली थी परसों, आज मंगलवार है ना, बाबा ने क्या कहा, बच्चे केवल इतना, हमारी मुरलियों में इतने मंत्र हैं हम उनका प्रयोग नहीं करते, करिए। बाबा ने कहा बच्चे तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, सफलता मूर्त हो, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बच्चे स्मृति लाओ, हुआ पड़ा है, हमने पढ़ लिया, डायरी में नोट किया, लेकिन अभ्यास नहीं किया, स्वरूप नहीं बने। एक अव्यक्त मुरली में है, बच्चे अपने को शिव शक्ति समझो, एक स्टेप समझ रहे हो ना, आप जो बैठे हैं आप भी मेरे से दूर हैं, एक स्टेप माना यहाँ इस टेबल के कोने पे खड़ी समस्या भी मेरे पर वार नहीं कर सकती, अगर मेरा ये स्वरूप है, मैं शिव शक्ति हूं। अब होता क्या है, जब बात होती है तब तो हम उससे प्रभावित हो जाते, फिर अरे बाबा ने कहा था ना शिव शक्ति समझना, उस समय मेरा ये स्वरूप इमर्ज हो। तो बाबा ने कहा एक स्टेप पर खड़ी समस्या भी तुम्हारे पर वार नहीं कर सकती, ये अव्यक्त मुरली है बाबा की। तो अगर हम भी बेफिक्र बादशाह बनकर रहना चाहते हैं, जैसे हमारे मम्मा बाबा रहे, उन्होंने भी यही सूक्ष्म पुरुषार्थ किया, हर घड़ी बस मैं आत्मा हूं। आप चलते फिरते घर से जाते हैं ना, उस कालों के काल महाकाल शिव बाबा को अपने साथ लेके जाओ, करण करावन हार शिव बाबा मेरे रक्षक बाबा आओ मेरे साथ आओ। पर ये तब अभ्यास होगा हमें जब हम पहले आधा घंटा कोई भी सवेरे दोपहर शाम बैठकर ये निश्चिंत होकर अभ्यास करें, फिर आप जब भी जाने लगेंगे ना तो आपको इमर्ज होगा, तो आप कहेंगे बाबा चलो, तो बाबा आपके साथ रहेगा। तो सदा बेफिकर निश्चिंत रहेंगे। बच्चा कहना नहीं मानता, धंधा नहीं चल रहा, करण करावन हार शिव बाबा आप हैं, मैं तो आपके आगे बैठा हूं, धंधा करना आपका काम है। पर ऐसे नहीं मैं चादर ओढ़ के सो जाऊं, मेरे को तो बीपी हाई हो गया है, गोली खाई सो गए, बाबा तू कर, तो बाबा कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम निश्चिंत, बाबा आप करण करावन हार हैं, क्योंकि हमारे भी तो हिसाब किताब है ना। ठीक है, ओम शांति। तो बाबा ने जो जो कहा है इसको हम प्रैक्टिकल स्वरूप अवश्य बने।
आदरणीय दीदी जी ने अपनी अनुभव युक्त ज्ञान रत्नों से हम सबको सजाया। आपने नोट किया होगा, सुनाते सुनाते बीच बीच में आप सबको जो भी शब्द बोलते थे उस स्थिति का अभ्यास भी कराया, ताकि हमें एक हैबिट बन जाए, जो उनकी अपनी हैबिट है, जिसके आधार पर, तप के आधार पर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो आप समान एक बनाने की भावना से वो सारा अभ्यास आप सबको भी करवाया और साकार मम्मा बाबा की पालना में पले हुए और प्रैक्टिकल लाइफ में उन सब चीजों को अडॉप्ट किया हुआ है। और ऐसा ही हम सबको भी कहा है कि प्रैक्टिकल में लाना है, क्यों थ्योरेटिकल हमें समझ भी है, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आज अवश्य ही इस क्लास के बाद आप इतना तो संकल्प जरूर लेंगे कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों को उतारेंगे और डेली इसका अभ्यास भी जरूर करेंगे। और दीदी जी को हाथ हिला करके धन्यवाद भी देंगे और ये विश्वास भी दिलाओ कि हम इन सब बातों पर अवश्य ही अमल करेंगे।
बना है साथी सृजनहार, हमको काहे की चिंता, मिला है करण करावनहार, हमको काहे की चिंता।